ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल द्वारा वैशाख 17 गते के लिए आह्वान किया गया संघीय संसद का अधिवेशन स्थगित। काठमांडू के महाराजगंज स्थित राष्ट्रीय पुलिस प्रशिक्षण प्रतिष्ठान को स्थानांतरण न करने का सरकार का निर्णय। मार्गशीर्ष से फागुन महीने तक अत्यधिक हिमपात होने के कारण हिमालयी क्षेत्र में शैक्षिक सत्र का समय परिवर्तन करने की सांसदों की मांग। और अमेरिकी नौसेना की नाकाबंदी रहने तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज न खोलने पर ईरान का अड़ान। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल ने संघीय संसद के दोनों सदनों के अधिवेशन स्थगित कर दिए हैं। राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता रितेश कुमार शाक्य द्वारा आज जारी की गई विज्ञप्ति के मुताबिक नेपाल सरकार मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर आज राष्ट्रपति पौड़ेल ने विशेष कारण बताते हुए अधिवेशन स्थगित होने की घोषणा की। बता दें कि इससे पूर्व मंत्रिपरिषद बैठक की वैशाख 8 गते की सिफारिश पर राष्ट्रपति पौड़ेल ने वैशाख 17 गते के लिए अधिवेशन का आह्वान किया था। सरकार ने सरकारी निकायों में मौजूद सॉफ्टवेयर तथा सूचना प्रविधि संबंधी विषयों पर अध्ययन करने के लिए कार्यदल गठन किया है। आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक ने सूचना तथा संचार प्रविधि सलाहकार के संयोजकत्व में अध्ययन कार्यदल गठन किया है। यह जानकारी शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री एवं सरकार के प्रवक्ता सस्मित पोखरेल ने दी। बैठक ने मंत्रिपरिषद के 2075/1 के निर्णय के अनुसार महाराजगंज स्थित राष्ट्रीय पुलिस प्रशिक्षण प्रतिष्ठान की 114 रोपनी 3 आना भूमि को राष्ट्रपति कार्यालय के नाम पर हस्तांतरण करने के निर्णय के स्थान पर उक्त भूमि को पूर्ववतः रूप में राष्ट्रीय पुलिस प्रशिक्षण प्रतिष्ठान द्वारा ही उपयोग करने का निर्णय भी किया। यह जानकारी प्रवक्ता पोखरेल ने दी। मंत्रिपरिषद बैठक ने इंटीग्रेटेड वाटर सप्लाई एंड सीवरेज मैनेजमेंट सेक्टर प्रोजेक्ट के लिए एशियाई विकास बैंक से प्राप्त होने वाले 115 मिलियन अमेरिकी डॉलर के रियायती ऋण सहायता संबंधी वित्तीय समझौता तथा अन्य संबंधित दस्तावेजों को अंतिम रूप देने के विषय में वार्ता करने के लिए अर्थ मंत्रालय के सहसचिव के नेतृत्व में वार्ता टोली गठन किया है। इसी प्रकार प्रवक्ता पोखरेल ने पत्रकारों के प्रश्न के उत्तर में काठमांडू उपत्यका सहित देश भर के सुकुम्बासी बस्तियों को हटाने के विषय में मंत्रिपरिषद में कोई चर्चा नहीं हुई यह स्पष्ट किया। हिमालयी क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करने वाले सांसदों ने हिमालयी क्षेत्र में शैक्षिक सत्र का समय परिवर्तन करने के लिए सरकार से मांग की है। शिक्षा विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री सस्मित पोखरेल से आज मंत्रालय में मिलकर सांसदों ने हिमालयी जिलों में मंगसीर से फागुन तक अत्यधिक हिमपात होने के कारण विद्यालय संचालन, छात्रों की नियमित उपस्थिति तथा समग्र शैक्षिक कैलेंडर पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ने के कारण शैक्षिक सत्र का समय मौसम के अनुकूल व्यवस्थित करने की मांग की। साथ ही सांसदों ने हिमालयी क्षेत्र में छात्रों को अध्ययन, शैक्षिक पूर्वाधार और संसाधन व्यवस्थापन में व्यावहारिक कठिनाइयां होने के कारण आवश्यक सहजीकरण करने का अनुरोध भी किया है। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री पोखरेल ने हिमालयी क्षेत्र की शैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए सरकार आवश्यक सहजीकरण करेगी यह विश्वास व्यक्त किया। अत्यधिक गर्मी या गर्म हवा लू से बचने के लिए पूर्व तैयारी, पूर्व कार्य तथा शीघ्र प्रतिकार्य कार्य योजना 2083 के मसौदे पर आज चर्चा हुई। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण ने नेपाली सेना, नेपाल पुलिस और सशस्त्र पुलिस विभिन्न विकास साझेदार संस्थाओं तथा सरोकार वालाओं के बीच कार्य योजना मसौदे पर आज चर्चा की। मसौदे पर चर्चा के दौरान प्राधिकरण के कार्यकारी प्रमुख दिनेश प्रसाद भट्ट ने सही सूचना प्रवाह करते हुए पूर्व तैयारी और प्रतिकार्य कार्यान्वयन के लिए सभी के सहयोग और समन्वय की आवश्यकता बताई है। इसी प्रकार चर्चा में भाग लेने वालों ने पूर्व तैयारी तथा पूर्व सूचना प्रवाह को प्रभावी बनाने और इसके दीर्घकालीन समाधान के लिए कार्य योजना तैयार करने पर जोर दिया। राष्ट्रीय सभा के अंतर्गत संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रीय सरोकार समिति की आज की बैठक में सांसदों ने साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए विदेशी सामाजिक संजाल के नियमन संबंधी नीति निर्माण प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की आवश्यकता बताई है। साइबर अपराध नियंत्रण, आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रतिकार्य व्यवस्थापन के विषय में समिति की बैठक में हुई चर्चा में सांसदों ने पंजीकृत न हुए सामाजिक संजाल और एआई के दुरुपयोग से होने वाले साइबर अपराध रोकने के लिए सामाजिक संजालों के पंजीकरण प्रक्रिया संबंधी नीतियों को शीघ्र आगे बढ़ाने की बात कही। इसी प्रकार सांसदों ने आपदा व्यवस्थापन के लिए जनशक्ति, संसाधन, कानूनी संरचना और प्राविधिक क्षमता सभी पक्षों को मजबूत बनाते हुए प्रभावी कार्य योजना तैयार करने पर जोर दिया। सांसदों ने आपदा पीड़ितों को दी जाने वाली राहत की किस्त में हो रही देरी को तत्काल रोकने और देरी के कारणों में स्पष्ट जवाबदेही सुनिश्चित करने की बात कही। बैठक में प्रहरी महानिरीक्षक दान बहादुर कार्की ने फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे विदेशी सामाजिक संजालों की नई और जटिल डिजिटल प्रौद्योगिकी के कारण साइबर अपराध के खिलाफ प्रमाण संकलन में चुनौती देखी गई यह जानकारी दी। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण के कार्यकारी प्रमुख दिनेश प्रसाद भट्ट ने वायु प्रदूषण, गर्म हवा की लहर तथा जलवायु परिवर्तन के कारण आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए प्रतिकार्य योजना का विकास, कृत्रिम अभ्यास का विस्तार तथा निजी क्षेत्र के साथ सहयोग बढ़ाया गया यह जानकारी दी। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं अब कुछ देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन,
भाग्यवानी बाबू, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे, ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजी।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजी।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् बाबुजी।
ओए वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
है त पनि एनटीसी को सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटीसी को डे प्याक लिन *14## डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। काठमांडू उपत्यका में वायु प्रदूषण बढ़ने लगा है। वर्षा होने के साथ सुधार दिखा वायु गुणवत्ता अचानक बिगड़कर बहुत अस्वस्थ स्तर पर पहुंच गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI के अनुसार वायु गुणवत्ता सूचकांक आज सुबह 11 बजे तक बढ़कर 247 पहुंच गया है। यह स्तर बहुत अस्वस्थ श्रेणी में आता है, जिसमें आम लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। पर्यावरण विभाग के महानिर्देशक ज्ञानराज सुवेदी के अनुसार वर्षा न होना, बढ़ती सुसुप्तता, कृषि अवशेष जलाने की प्रवृत्ति तथा वन डढ़ेलों की घटनाओं ने वायु प्रदूषण बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाई है। अभी वर्षा न होने से सुसुप्तता बढ़ रही है, इससे धूल और धुआं वायुमंडल में जमा होने में मदद मिली है। उन्होंने कहा, यदि वर्षा होती तो हवा में मौजूद कण जमीन पर बैठ जाते और प्रदूषण कम हो जाती, लेकिन अभी यह स्थिति नहीं है। उनके अनुसार संबंधित निकायों को टिकाऊ तथा पर्यावरण अनुकूल विकास के प्रभावी रूप से लागू करने का आग्रह किया गया है। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री डॉ विक्रम तिमल सिन्हा ने कहा है कि सरकार प्रेस तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संरक्षण और प्रवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है। आज नेपाल पत्रकार महासंघ के पदाधिकारियों के साथ मंत्रालय में हुई बैठक में संचार मंत्री डॉ तिमल सिन्हा ने हाल के समय में सामाजिक संजाल तथा कुछ संचार माध्यमों के जरिए मिथ्या, भ्रामक, पक्षपातपूर्ण तथा गैर जिम्मेदार सामग्री प्रसारण बढ़ने पर चिंता व्यक्त की। मंत्री डॉ तिमल सिन्हा ने चरित्र हत्या करने वाली सामग्री के प्रकाशन तथा प्रसारण से व्यक्ति पर गंभीर मानसिक, सामाजिक और व्यावसायिक प्रभाव पड़ सकता है, यह कहते हुए पत्रकारों और सामग्री निर्माताओं को जिम्मेदार होने पर जोर दिया। चर्चा के दौरान महासंघ की अध्यक्ष निर्मला शर्मा ने पत्रकारिता क्षेत्र में विद्यमान विकृतियों और चुनौतियों को महासंघ द्वारा भी स्वीकार किया गया है, यह उल्लेख किया। पेयजल तथा सरसफाई डिवीजन कार्यालय कलैया बारा के तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख इंजीनियर किशोरी प्रसाद यादव के विरुद्ध 1,46,81,000 रूपये के भ्रष्टाचार का मुकदमा दायर किया गया है। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के प्रवक्ता सुरेश नेउपाने के मुताबिक सार्वजनिक सेवा पद पर रहते हुए गैरकानूनी तौर पर संपत्ति अर्जन के आरोप के साथ उन पर केस दायर किया गया है। प्रवक्ता नेउपाने के मुताबिक समग्र में कुल आय से अधिक कुल व्यय पाया गया है, जिनमें 1,46,81,000 रूपये का स्रोत स्पष्ट नहीं है, इसलिए उतनी ही रकम क्लेम्ड करते हुए अख्तियार ने यादव के विरुद्ध आज विशेष अदालत में केस दायर किया है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एक बार होर्मुज पर अमेरिकी नौसेना के कब्जा होने की बात कही है। इसके साथ ही ट्रंप ने ईरान की सरकार पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, यूनाइटेड स्टेट्स नेवी की मंजूरी के बिना कोई भी जहाज अंदर या बाहर नहीं जा सकता। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, ईरान को यह समझने में बहुत मुश्किल हो रही है कि उनका नेता कौन है। उन्हें बस यह पता ही नहीं है अंदरूनी लड़ाई कट्टरपंथियों के बीच है, जो युद्ध के मैदान में बुरी तरह हार रहे हैं, और नरमपंथियों के बीच हैं, जो बिल्कुल भी नरमपंथी नहीं है। यह सब बहुत ही अजीब है। ट्रंप ने आगे लिखा, होर्मुज जलडमरू मध्य पर हमारा पूरा नियंत्रण है। यूनाइटेड स्टेट्स नेवी की मंजूरी के बिना कोई भी जहाज अंदर या बाहर नहीं जा सकता है। ट्रंप ने होर्मुज पर दावा करते हुए लिखा, इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है जब तक कि ईरान कोई समझौता करने में सक्षम नहीं हो जाता। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15.7 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल द्वारा बैशाख 17 गते के लिए आह्वान किया गया संघीय संसद का अधिवेशन स्थगित। काठमांडू के महाराजगंज स्थित राष्ट्रीय पुलिस प्रशिक्षण प्रतिष्ठान को स्थानांतरण न करने का सरकार का निर्णय। मार्गशीर्ष से फागुन महीने तक अत्यधिक हिमपात होने के कारण हिमालयी क्षेत्र में शैक्षिक सत्र का समय परिवर्तन करने की सांसदों की मांग, और अमेरिकी नौसेना की नाकाबंदी रहने तक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज न खोलने पर ईरान का अड़ान। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।